महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धे तत्व प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम् नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में अभी हम तीसरा जो अनुभाग बंध अधिकार है उसको देखते हुए पृष्ठ संख्या 11 पर आ गए। 1-1 यहाँ हम अनुभाग बंध में स्वामित्व की प्ररूपणा देख रहे थे। ये अपना 12वां नंबर का अनुभाग चल रहे हैं। पहले हमने संज्ञा प्ररूपणा देखी, फिर सर्वबंधन और सर्वबंध देखा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट देखा, जघन्य अजघन्य देखा, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव भी देखा। अब स्वामित्व की बात हम मार्गणाओं में देखते हैं। यहाँ औदारिक मिश्र की बात हमने पढ़ी थी कल, अब वैक्रे कायोगी जीवो में मिला 11 पृष्ठ पर नीचे का पेरेरा। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? ये चार घाती कर्म है तो कैसे तो प्रशस्त है, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग तो संक्लेश से अधिक संक्लेश से होगा। तो कहते साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव या नारकी मिथ्यादृष्टि जी है ना, देव और मिथ्या नारकी, क्योंकि वैकिरिक का योगी है और संक्लेश उत्कृष्ट संक्लेश मिथ्यादृष्टि के होगा। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी ये तो इसमें शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अधिक है, तो अभी समय दृष्टि और वो उत्कृष्ट विशुद्धि वाले ले। तो कहते साकार जागृत, देखो अधिक संक्लेश भी जागृत अवस्था में है और अधिक विशुद्धि भी जागृत अवस्था में। वे साकार जागृत नियम से सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नार की समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। देव और नारकी दोनों को समय दृष्टि, देव और नारकी समय दृष्टि। वो वैकृत मिश्र का योग्य होगा। ऐसा हम अपने सोचा था अपने, परंतु अन्यत्र भी वैसी ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अनंतानुबंधी की विषय योजना करते समय समय दृष्टि के और ज्यादा विशुद्धि होगी, परंतु ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हाँ नहीं, उसमें तो असंख्या गुना निर्जरा वाले नहीं, यहाँ तो देव और नारकियों में विशुद्धि में क्या लेना, वो तो गुणस्थान तो चौथा ही है। अब चौथे में विशुद्धि कब ज्यादा होगी? तो पहले हमने ऐसा विचार किया था कि अनंत अनुबंधी के विषय योजना के काल में वहाँ तीन करण परिणाम होते हैं। शायद क्या हम विषय योजना के टाइम में ले रहे थे, शाही खो जाने के बाद विशुद्धि फिर कैसे बढ़ेगी? होने के टाइम में बढ़ेगी, यानी शाही वाले की ज्यादा है, वैदिक वाले की कम है, ऐसा तो है ही नहीं है। अभी यथा योग्य जहाँ विशुद्धि ज्यादा इतना ही ले आए, हाँ उसमें तो शाही वाले की ऑर्डिनरी विशुद्धि ज्यादा होगी नहीं ना, शाही होने के समय होती है, परंतु वो तो ऐसा नहीं कहीं, नहीं नहीं, नहीं। तो यह समय दृष्टि जीव लिया ना, शायद समय दृष्टि कहते हैं। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि, हमेशा आयु के लिए तत्प्रायोग्य शब्द आया, तत्प्रायोग्य विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी समय दृष्टि जीव, ये समय दृष्टि शब्द दोनों के लिए अप्लीकेबल है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी मनुष्य आयु बांध रहे हैं, इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी जीवों में जानना चाहिए, परंतु इनके आयु कर्म का बंधन नहीं होता, तथा इतनी विशेषता है इनके वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी ये आपकी बात है। उपशम श्रेणी से गिरकर प्रथम समय में देव हुआ अन्यतर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, वैकृत मिश्र में प्रथम समय में देव हुआ, यानी वो भी रुजुगति से जाने वाला लेना, कि जितने समय जाएगा उतने उसकी विशुद्धि कम होगी। अब हम 12 पृष्ठ पर आते हैं। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आहारक का योगी गुणस्थान कौन सा लेना? अच्छा गुणस्थान में वह है तो आहारक का योग में, फिर भी उसमें उनका जो जहां संकलेश ज्यादा है वहां ले लेना। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध, क्योंकि अभी शुभ प्रकृतियां लेनी है, ऊपर घाती लेना था इसलिए उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया था, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। मंजू कौन सी आयु बांधेगी? देवता। इतनी विशेषता है कि आहारक मिश्र का योग में जो जीव शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा वह आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी शरीर पर्याप्ति का समय लिया मिश्र का योग का अंतिम समय करेगा ग्रहण करेगा, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसके आहार का योग होगा, हाँ यानी वो मिश्र वाला अंतिम समय लिया वहां उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। आगे बढ़े। कार्मण का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी चार घाती कर्म है और कार्मण का योग में है, तो कार्मण का योग में तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी हो गए, तो उत्कृष्ट संकलेश किसके होगा? संगी पंचेंद्रिय मिथ्या ऋषि, तो कौन है? तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी है। कर्मण कार्य ने उस गति में वो अभी ऑलरेडी उत्पन्न हुआ है, हिरण्य में उत्पन्न हुआ या मनुष्य में या देव में या नरक में। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का सम्य दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, अथवा जो उपशामक जीव मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है, कारमान का युग में है, वो उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। मुझे लगा था वो कृतकृत्य वेदक वाले लेते हैं क्या, पर नहीं, उपशामक को लिया, वहां विशुद्धि ज्यादा है। समय वाला है हाँ, जागृत या उसका जिसको हम कहेंगे अब साकार उपयोग अनाकार उपयोग इस तरह से साकार और जागृत, साकार यानी ज्ञान उपयोग और जागृत, क्योंकि नींद में मरने वाले उसकी नींद चलती होगी ना वहाँ पर, उदय तो हो सकता है ना उसका, तीन समय वाली तो बात है, जबकि हमें चालू है तभी तो वो उधर पहुंचता है, आंख खोलते अरे मैं कहाँ आ गया, नरक में कैसे गए, होता ना कितने हम देखते हैं, तो उसके जो कुछ वहाँ उदय चल रहा है वो चल रहा है, अभी समय दो समय की तो बात है। हाँ वह जिसकी विशुद्धि ज्यादा है उसको दे लेंगे। आगे वेद मार्गणा में स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में ग्यारहवे में
चढ़ने वाला लेना पड़ेगा, नहीं दसवें के अंतर में मरेगा वहां तक अनुभव का बंद
अच्छा। हमें तो देव के प्रथम समय में अनुभव बंद कराना है, चौथे में आया ना वो
अंतिम बंद होगा उसका,
वो तो वहां किया उसने बंद
पर पीछे उसका
तभी कारमान का योग था क्या, नहीं था, कारमान का योग कब शुरू हुआ, नेक समय में मरने के समय में मनुष्य था, अवधारी क्या मनोयोग वचन योग कहीं नहीं था, अब वो मर कर कारमान का युग में आया तब तो वहां ले लेना उसके, चौथे में आया है परंतु अभी भी बहुत विशुद्धि से आया है इसलिए अथवा में ले लिया और उसको अन्य विकल्प भी ले लिया, सम्य दृष्टि अधिक विशुद्धि वाला हाँ, इसलिए दूसरा ही ले लिया उसको, अथवा कहकर एक जगह तो सबको स्वीकार किया चारों गतियों और एक जगह खाली उपशामक को लिया, मुझे लगा था कृतकृत्य वेदक वाले को लेंगे पहले समय वाले, तो कृतकृत्य वेदक वाला पहले भाग में मरकर देव में जाता है, वहां पर भी विशुद्धि है परंतु यहाँ तो उपशामक को स्वीकार है। ग्यारहवें इसमें मरा, ग्यारहवें में तो एक सदृश परिणाम है, तो उसमें विशुद्धि सबकी समान है, तब उस मरकर अभी चौथे के योग्य विशुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल ज्यादा होगा चौथे के योग्य होगा, यहाँ तो स्थिति की बात है या अनुभव की चल रही है, इमीडिएटली बढ़ेगा। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में ये वेद मार्गना यहाँ होती है, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित तीन गति का संगी मिथ्या दृष्टि जीव। ये तीन गति क्यों कहा मंजू, हाँ उसमें तो नपुंसक वेद है, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव जो स्त्रीवेदी है वो स्त्रीवेद के उदय का अंतिम समय लेना, पुरुषवेदी है वो उसके उदय का अंतिम समय लेना। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग ओग के समान है यानी अप्रमत्त। तत्प्राय विशुद्ध वाला अप्रमत्त लेना, ऐसे लिया था ना हमने ओग में। नरकायु को क्यों लेना है? जब आयु कर्म में देवायु का ही उत्कृष्ट है तो नरकायु को क्यों याद करना है? यह मूल प्रकृति की बात चल रही है। आयु कर्म में देखो आठ नंबर के पेज पर पहली लाइन में, साथ में अंतिम लाइन में पूछा था आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्राय विशुद्ध युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव। आयु में उसी का अनुभव सबसे ज्यादा है, उसकी उत्तर प्रकृति की बात यहाँ नहीं लेनी है। ख्याल में आती है? अब नपुसक वेद वाले जीवों में चार घाती कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तीन गति का मिथ्या दृष्टि जीव। तीनों में ले, अकेले नारकी को या सातवें नर के नारकी को नहीं लिया है, देव बिना तीन लिया ना, देवों में नपुसक वेद नहीं है और वहां हमने नरक बिना लिए थे। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है यानी क्षपक अनिवृत्तिकरण। नपुसक वेद के उदय से ही चढ़ने वाला, उसके वेद के उदय के अंतिम समय में इन तीन जो प्रशस्त प्रकृतियां है उसका अनुभाग मैक्सिमम बन जाएगा। अवगत लिखा है, अपगत चाहिए ना, अपगत वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी वो चढ़ने वाले से उतरने वाले का संकलेश है और वो अपगत वेद का अंतिम समय ले लेना यानी अंतिम अंतर्मुख ले सकते हैं। अपगत वेदी में और नीचे लाना है ना उसको। हाँ तो कौन है? तो अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसमें कौन से वेद से चढ़ता उतरता है उसकी बात नहीं उठाई थी, फिर भी और नीचे आकर उसका उदय शुरू होगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग ओह के समान है यानी क्षपक लेना है इसका, सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक अंतिम। दसवें गुण स्थान के अंत। अब कषाय मार्गणामी, क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? कहते संगी मिथ्यादृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग नपुसक वेदी जीवों के समान है। यानी वेदिनी आयु नाम कब लेना है, शपक में ले लेना उसका, क्रोध का अंतिम समय, मान का अंतिम समय, माया का अंतिम समय। यहाँ लोगों को लोभ के लिए, हाँ ऊपर लिखा था ना, हाँ लोभ के समान कहाँ कहाँ, क्योंकि वो दसवें गुण स्थान लोभ कषाय वाले के घटित होता है, इसलिए लोभ कषाय वाला कल लिया था। ओग के समान कहाँ कहाँ घटित होता है, पेज नंबर 8 ऊपर से तीसरी लाइन में लिखा है ना, मन योग्य वचन योग्य का योग्य अवतारी का ये लोभ कषाय वाले, उसमें इसमें क्या वो डिफरेंस है, ये तो अनिवृत्तिकरण वाला लेना है, शपक अनिवृत्तिकरण, क्योंकि वहीं तक उसका है, और लोभ का उदय तो दसवें तक है, तो ओग के समान। उत्कृष्ट अनुभाग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, घाती के वेदिनी नाम गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग के लिए दसवां गुण स्थान ले। देखो वेदिनी नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद लोभ वाले के दसवें के अंत में होगा, और क्रोध मान माया वाले के अनिवृत्तिकरण में अपने अपने अंतिम समय जो उसका उदय का वहां लेना। ये शेष कर्म ने वेदिनी नाम गोत्र और आयु की बात है, आयु में छठा गुण स्थान है, सातवां गुण स्थान है, अप्रमत्त अप्रमत्त है, प्रमत्त नहीं। केवल आहार का योगी के लिए हमने छठे में लिया, मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, संगी मिथ्या दृष्टि, मत्य ज्ञानी में श्रुता ज्ञानी में मिथ्या दृष्टि लिखने की क्या जरूरत थी, हाँ क्योंकि ये संसाधन वाले को भी मति अज्ञान और श्रुता अज्ञान होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान डाला। साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त अन्यतर चार गति का पंचेन्द्रिय जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। जैसे एक एक अनुस्थिति बंध होता है, वैसे अंतिम जो अनुभाग बंध है उसकी बात है यहाँ। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, पंचेंद्रिय संगी साकार जागृत तत्प्राय संकलेश युक्त, अभी क्या लिया, संकलेश वाला लिया, अभी संकलेश में कौन सी बंधेगी, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य, यानी बांधने वाला तिर्यंच और मनुष्य आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, इसमें नरकायु लेना है। क्योंकि वही एक अप्रशस्त प्रकृति है आयु में, इसी प्रकार विभंग ज्ञानी जीवन में जानना चाहिए। अभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, क्योंकि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त कब होगा, मिथ्यात्व के अभिमुख और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत सम्य दृष्टि जीव, छठे वाला भी मिथ्यात्व में जा सकता है, पांचवे वाला भी, चौथे अपने यहाँ उसकी ज्यादा संकलेश यहाँ ज्यादा है, संकलेश लेना है आपको, आदि कर्मों में जहाँ संकलेश है वहाँ अनुभव बंध ज्यादा है। गुप्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग ओह के समान है, क्योंकि समय दृष्टि है तो वेदनीय नाम और गोत्र के लिए क्षपक सूक्ष्म सांप्रय और आयु के लिए अप्रमत्त। इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्य दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। अवधि दर्शनी में क्या डिफरेंस होगा अश्विन में? साकार कैसे कहेंगे? दर्शन मार्ग ना में है ना, ऐसा ही ना। मन परे ज्ञानी जीवों में निराकारी उपयोग है ना उसका, अवधि दर्शन अवधि दर्शनी जीव। फिर भी अवधि ज्ञानी जब कहेंगे, यहाँ पर भी साकार लिखने की क्या जरूरत पड़ी? तो जैसे जिसके वो अवधि ज्ञानी वगैरह केवल उपयोग रूप नहीं, बाकी भी हम उसको अवधि ज्ञानी कहते हैं, तो क्या अवधि दर्शनी वाले को भी ऐसे कहेंगे? कहेंगे ना, उसकी तो पर्याय रूप तो रहेगी वो हमेशा, उसमें भी साकार ले सकते हैं क्या? नहीं अवधि दर्शन में उपयुक्त तो होगा तो अपन अवधि दर्शन ही जीव जब कहेंगे। अरे मुझे दूसरा विकल्प आया है, पहले मैंने आपको पूछा था क्या डिफरेंस है अवधि
दर्शन ही, तो अवधि दर्शन में उसकी के बाद
उपयोग रूप लेना का नहीं लेना है मेरा भी प्रश्न है। परंतु इसी प्रकार लिख रहे हैं ना, वो अवधि दर्शन वाला है बस इतना ही है।
तो
जब हम तीन ज्ञान वाले कहते हैं, मत मन परे ज्ञानी जब कह रहे हैं, तो ज्ञानी जीव यानी मन परे ज्ञान वाला जीव यानी चार ज्ञान का धारी अगर हम मान लेते हैं एट ए टाइम, तो उसका एक ही उपयोग है मार्गणा में लेना, साकार लेना पड़ेगा। आगे मन परे ज्ञानी जीवों में नितिन में गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक? 6 से 9। अच्छा, बाद में क्या होता है मन परे ज्ञान में? 6 से 12। मन परे ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त असंयम के अभिमुख, आपको याद होगा स्थिति बंध में भी ऐसा ही दिया था, उसको मिथ्यात्व के अभिमुख कभी नहीं कहा, असंयम के अभिमुख लिया। और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयत जीव, क्योंकि चौथे में जाना होगा तो प्रमत्त वाला जीव जाएगा, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग ओग के समान है। शेष कर्मों में कुछ कुछ क्यों लेना? हाँ मंजू, वेदनीय नाम गोत्र अघाती सब, यानी वेदनीय नाम गोत्र का क्षपक में, क्योंकि मन परिज्ञानी तो 12वें तक है और आयु भी 7वें में लेना। इसी प्रकार संयत जीवों की जानना चाहिए। संयमी में क्या होगा, उत्कृष्ट संकलेश कब होगा, इतनी विशेषता है, अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित और मिथ्यात्व के अभिमुख संयत जीव। मनोपरिज्ञानी में वो असंयम के अभिमुख लिया है, यानी उसका समय तो नहीं गिर रहा था। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है। अब ये तो नौवे गुण स्थान तक ही है, तो उसी के अंत में उसका क्षपक वाले का उत्कृष्ट बंध होगा। इतनी विशेषता है वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी अनिवृत्ति क्षपक जीव होता। ये तो अभी आसान हुआ ना थोड़ा स्वामित्व देखने से, कहां क्या होता है। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में अभी छठे सातवें दो ही गुण स्थान है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के अभिमुख, ना संयम के अभिमुख कहा ना मिथ्यात्व के अभिमुख कहा, तो उसके सामायिक यानी परिहार विशुद्धि संयम में से वो सामायिक छेदोपस्थापना यानी वो विशुद्धि उसकी छूट जाएगी ऐसा जीव गया, ज्यादा विशुद्धि वाला है वो। अभी वो तो ऑर्डिनरी है, सामायिक छेदोपस्थापना वाला हो। और अंतिम अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयत जीव, वो भी प्रमत्त संयत वाला गया। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। छठा सातवां चलता है परंतु उसकी छूट भी तो जाएगी, और परिहार विशुद्धि के साथ तो श्रेणी चढ़ेगा नहीं, ये भी है और उसकी छूट गई, ऐसा भी हो सकता है ना, उसके सामायिक छेदों की स्थापना हो गई। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी दो ही गुण स्थान है इसके, साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग ओघ के समान, यानी अप्रमत्त लेना यहाँ पर, आयु के लिए तत्प्रायोग शब्द लगा, तत्प्रायोग विशुद्धि वाला। सातवें में जा सकता है, हाँ हो सकता है, या वो सामायिक में आया फिर छठा सातवा उसका बहुत बार हुआ फिर श्रेणी चढ़ा, ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्ट चढ़ता है कि नहीं पता नहीं मुझे। सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों में इस संयम की अपेक्षा भेद है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? ये चार घाती कर्म कौन कौन से बंध रहे हैं निखिल भाई? वेदिनी घाती कर्म है और मुनि, कौन सा मुनि बंध रहे हैं? तो तीन ही घाती कर्म है, घाती तो ये तो चार घाती कर्म तो वो कहते आए ना, परंतु ये हम तो तीन समझना चाहिए, तीन ही घाती कर्मों का बंध है। तो तीन घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। उसको चार के बदले अपने पेंसिल से तीन लिखो तो तीन कर, हाँ सोम संभव घादी चार लिखा है ना, तो घादी तीन। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। क्षपक कहने से वो तो अंतिम ही ने भी बारहवें में जाने वाला लेना। संयता संयतों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अभी संकलेश वाला लेना तो पांचवे से जो मिथ्यात्व में जाएगा उसको लेना। मिथ्यात्व के अभिमुख साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य, वो भी स्पेसिफिक किया क्योंकि वो तो पांचवे गुणस्थान में दो ही जा सकते हैं, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। परंतु मनुष्य में जघन्य स्थान होगा, जघन्य स्थान भी मनुष्य में है, प्रतिपात वाले स्थान भी मनुष्य में जघन्य होंगे क्योंकि जो रेंज है ना पांचों गुणस्थान के विशुद्धियों की रेंज, जघन्य भी मनुष्य की ओर है, उत्कृष्ट भी मनुष्य की ओर, और बीच में तिर्यंचों की रेंज है। अभी देखेंगे, वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अभी हम मनुष्यों को लेना पड़ेगा क्योंकि संयम के अभिमुख वाले लेंगे। साकार जागृत सर्व विशुद्ध संयम के अभिमुख और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। देखो मुझे ऐसे लगता है यहाँ जो गिरने वाले के स्थान तो दोनों के समान हो गए, चढ़ते समय जो एकांत विशुद्धि वाले जो है ना वहाँ वो डिफरेंस होगा ऐसा लगता है, यानी उसमें प्रतिपात स्थान प्रतिपद्यमान ऐसा कुछ अलग अलग है, वो तो वो रेंज उसमें है। किसमें आई थी ये बात, कर्मकांड में आई थी क्या, रब्बी साल में आई थी, उसके पिक्चर बनाए थे लब्धिसार में थी कि कर्मकांड में, संदृष्टि अधिकार में ये बात आई, जरा लब्धिसार देना और संदृष्टि में डायरेक्ट, हाँ या कर्मकांड की भी सेकंड पुस्तक भी देना लाल, हाँ इसमें भी देखिए। हाँ वो तो संहिता संहित वाले उसमें होगी ना, देश चारित्र के प्रकरण में होना चाहिए, ऐसे संयम में भी ऐसे स्थान होते हैं और वो तो आर्य और म्लेंज की अपेक्षा वहां भेद किए थे संयम में। संदृष्टि में मिलना जरा जल्दी मिल जाए, हाँ प्रतिपातमान प्रतिपद्यमान अनुभव स्थान सूक्ष्म संक्रमण ये तो उसके है, अभी हमें देश संयम में तीनों में वो बीच वाले में तीरंचों की रेंज ली है, एक होते प्रतिपात स्थान, एक होते प्रतिपद्यमान स्थान और एक है अनुभय स्थान। चलो ठीक है, फिर भी यहाँ उन्होंने सबको दोनों को स्वीकार किया, मिल गया मनुष्यों की रेंज जगन्य की और उत्कृष्ट मार है और तीरंचों के बीच में, तीनों के लिए प्रतिपात के लिए भी प्रतिपद्यमान के लिए भी और अनुभव के लिए।
अनुभव समान होगा स्थिति में चाहे थोड़ा फर्क, विशुद्धि
नहीं वहाँ तो विशुद्धि के स्थान देखे हमने,
नहीं नहीं पर शायद बंद की
बंद की अपेक्षा
स्थिति में शायद,
हाँ वो बंद उतना ही हो सकता है, उत्कृष्ट अनुभव का उतना वहाँ बंद होता होगा। अब ये तो हमने देखा संयम के अभिमुख वाले के वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट होगा, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध, हमेशा आयु में तत्प्रायोग्य शब्द लेते हैं, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। संयता संयत के उतनी आयु बंधे की 22 सागर है।
तो मनुष्य के 40 सागर से ज्यादा
ये तो हमने स्थिति देखी, परंतु उसका अनुभव स्थिति की अपेक्षा हम अनुभव की बात करेंगे, उसका अनुभव भी वहाँ उतना ही ज्यादा होगा। द्रव्यलिंगी वाला ले सकते, परंतु उसमें संयता संयत में हमने पहले भी देखा था, समय दृष्टिया संयता संयत को उसमें नहीं लिया था। अनुभाग में पता नहीं, अभी देखो ये तिरंच और मनुष्य तो ले लिया यहाँ पर, यानी संयता संयत इतनी अपेक्षा लगाई वहां द्रव्यलिंगी की उन्होंने नहीं ली।
क्योंकि
ये तो शुभ आयु है ना, तीन आयु में ही ऐसा है, स्थिति भी ज्यादा बंधेगी, अनुभव भी ज्यादा बंधेगी। जहाँ कम होगा, जहाँ स्थिति कम है वहाँ अनुभव भी कम होगा।
देखो द्रव्यलिंगी जो विद्या दृष्टि गति सागर के आयु बनता है, उसका अनुभव इतना ज्यादा नहीं बनता है, यहाँ पे तो अनुभव बहुत ज्यादा बनेगा ना, विशुद्धि की अपेक्षा। विद्या दृष्टि को जो
अब यहाँ दोनों को स्वीकार किया है, पहले भी मुझे याद है स्थिति की बात आई थी, तभी भी उन्होंने संहिता संयत के लिए वहाँ तक ही लिया था, वो द्रव्यलिंगी की अपेक्षा वहाँ नहीं ली थी उन्होंने। असंयतों में चार घाती कर्मों का भंग मत्य ज्ञानी जीवों के समान है। असंयत कहने से पहला गुणस्थान भी आ गया ना उसमें, तो मिथ्या दृष्टि को ज्यादा होगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? असंयत है परंतु संयम के अभिमुख वाला लेना, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य असंयत समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग मत्य ज्ञानी जीवों के समान है, इन्हें नरकायु में लेना। यानी आप कहते हैं कि मिथ्यात् से ऊपर जाने वाला या चौथी से ऊपर जाने वाला? चौथी से ऊपर जाने वाला। असंयत समय दृष्टि का अर्थ क्या है? उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, पहले से सातवें में जाने वाले से चौथे से सातवें में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा होगी। अब लेशा मार्गणा में देखेंगे, कृष्ण लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत, नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तीन गति का जीव देव बिना। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सर्व विशुद्ध, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर नारकी, असंयत समय दृष्टि की। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। मनुष्य और तिर्यंचों में विशुद्धि बढ़ती है तो उसकी पित्तपद्म शुक्ल लेशाएं हो जाएगी, इसलिए नारकी को लिया कृष्ण में। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संकलेश युक्त, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। ये नरकायु बांध रहा। इसी प्रकार नील और कापोत लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, यह नारकी के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करना चाहिए। नरकायु बांध रहा है क्योंकि वो तैतीस सागर की बांध रहा है, और नील और कपोतलेशा वाला यहाँ लेना है। यानी वहाँ नरकायु के उत्कृष्ट से इसका प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट ज्यादा होगा। एक मिनट, ऊपर क्या लिखा, तीन गति का लिया। अच्छा, घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंधे का स्वामी कौन है, तो वो नारकी में लेना है, केवल आयु के लिए नहीं। इन्हें चार घाती कर्मों के लिए अन्यतर तीन गति का लिया था ना। हाँ, तो यहाँ नारकी में ले। ज्यादा बंद नहीं, क्योंकि स्थिति बंद में हमने अंत कोड़ा कोड़ी वाला देखा। पीतलेशा वाले जीव में, परंतु आयु के लिए तीरंज और मनुष्य में ही लेना पड़ेगा। नील कपोतलेशा वाले नरकायु बांध कर तो तभी उसका उत्कृष्ट होगा ना। पीतलेशा वाले जीवों में हाँ इतनी विशेषता है। हाँ देखो, ऐसा लेना है, बांधने वाला नारकी वो किसके लिए, कौन, चार घाती कर्मों के लिए। ऊपर क्या लिखा था, कृष्ण लेशा वाले जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंधे का स्वामी कौन है, तो तीन गति का जीव लिया। सेकंड लाइन, नील और कपोत में नारकी उसका उत्कृष्ट का स्वामी है, क्योंकि नील और कपोत वाले मनुष्य तीर्यंच इतना उत्कृष्ट अनुभाग बंध घाती कर्मों का नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्थिति में भी देखे थे इतनी ज्यादा स्थिति नहीं बांधते। बाकी वेदनीय नाम गोत्र में तो हमने नारकी को लिया ही था, नारकी असह्य, वैसे यहाँ पर भी लेना। हाँ, चार घाती के लिए। वो चार घाती के लिए, चार घाती कर्मों के लिए, क्योंकि अन्यत्र तो हमने वेदनीय नाम गोत्र के लिए तो मनुष्य तिर्यंच नहीं, वहां तो नारकी को ले ही लिया है, और आयु में हम नील और कपोतलेशा वाले मनुष्य लेंगे, है ना। आयु का उत्कृष्ट बंध हाँ मनुष्य तीर्यंच नील कपोत वाले। जब नरकायु बांध रहे, केवल चार घाती के लिए डिफरेंस आया। पीतलेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, वो तो ले ही लिया ऊपर, विशेषता में क्या है। कृष्ण में तो नारकी को ही लिया, विशेषता किसमें, डिफरेंस किसमें। देखो, चार घाती के लिए नारकी के उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए, ये विशेषता हुई, क्योंकि कृष्ण में तो हमने तीनों गति वाले लिए थे। चार घाती नारकियों में तो सॉरी नील और कपोत में तो नारकी उत्कृष्ट बंद करेंगे चार घाती का। अब वेदिनी नाम गोत्र तो सबके लिए, कृष्ण नील कपोत सबके लिए समान, क्या तो नारकी में उत्कृष्ट बंद होगा।
सोशल मीडिया में चार जाति कर्मों के लिए जो नाती जो चार जाति कर्मों का उत्कृष्ट प्रबंध करेगा उत्कृष्ट होगा उतना अनुपात क्या मनुष्य के लिए देखा
कृष्ण लेश वाले ना
नहीं नील लेश
नील लेश वाले नहीं बांधेंगे मनुष्य और तीरें जो नील लेश वाले हमने स्थिति बंध में भी देखा था नील और कपोत लेश वाले मनुष्य तीरियन च इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं कर सकते याद आया कि भूल तो उसका अनुभव भी उतना कम बंधेंगे अप्रीत लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है अभी हम ऐसा लेते हैं अभी हम थोड़ी स्थिति की अपेक्षा विचार करके देखेंगे ये कैसी प्रकृति है अप्रशस्त घाती कर्म जहाँ अनुभाग बंध अधिक हो रहा है संकलेश से होता है वहीं पर स्थिति बंध भी संकलेश से होता है हम अभी स्थिति बंध से परिचित होके आए है ना तो प्रीत लेशा वाले में ये जो अधिक स्थिति कौन बांधेंगे देव बांधेंगे देव मिथ्या दृष्टि बांधेंगे क्योंकि पीत लेशा वाले मनुष्य तीरियंच तो देवगति बांधते हैं तो यह वहां तो थोड़ी उसकी विशुद्धि ज्यादा है तो पीत लेशा वाले जीव में एक इंद्रिय जाति का भी बंध होता है यानी उतने तो संकलेश होते हैं उनके और वहां स्थिति भी बड़ी बनती है उनकी फुल स्थिति बनती है तो अनुभाग भी ज्यादा बंधेगा कि नहीं हम नाम कर्म की अपेक्षा घाती में घटित करना चाहते हैं अब यहाँ क्या लिखा मैंने भी नहीं पढ़ा हम पढ़ेंगे देखो तो पीतलेशा वाले जो में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव मिथ्या दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है वेदीय नाम और गोत्र कर्म का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है सातवें गुणस्थान तक परिहार विशुद्धि है और सातवें गुणस्थानों में सामायिक छदोपस्थापना से भी परिहार विशुद्धि वाले की विशुद्धि ज्यादा है तो वहां उन्होंने अप्रमत्त गुणस्थान वाला लिया सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त आयु कर्म का भंग ओग के समान अप्रमत्त वाला लेना सर्व विशुद्ध अप्रमत्त इतना हम कहेंगे तो भी चलेगा ना तत्प्रायोगी लेना पड़ेगा वहाँ ज्यादा विशुद्धि से कुछ नहीं बात करती हूँ तत्प्रायोगी तो डालना ही शब्द है परिहार विशुद्धि में भी कहा था ओग के समान है उसमें कोई डिफरेंस बताया नहीं था देखो ना यहाँ 14 नंबर के पेज पर परिहार विशुद्धि 35 नंबर का पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन आयु कर्म का भंग ओग के समान है यानी उसमें कुछ परिहार विशुद्धि वाले के अधिक आयु बांध के ऐसा तो कुछ नहीं लिया यानी अधिक अनुभव वाले ऐसा नहीं लिया इसी प्रकार पद्मलेशा वाले जीवों के जानना चाहिए इतनी विशेषता है इनमें चार घाती कर्मों का भंग सहस्रार कल्प के समान है यानी वो पद्मलेशा वहां तक पाई जाती है इसलिए उसके समान लिया यानी अन्यत्र देव मिथ्या दृष्टि जीव ले ले रहे हैं क्योंकि पद्मलेशा वाला मनुष्य और तीरियंच अधिक विशुद्धि वाला होगा तो संकलेश देवों के ज्यादा होते देखो इसमें लगता है ना देव क्या पाप कर रहे हैं अभी संकलेश तो उनके ज्यादा है जैसे पीत पद्म वाले जो मनुष्य तीरियन चाहे वो जो बंद कर रहे हैं उसकी अपेक्षा उसी लेशा में विद्यमान देवों के विशुद्धि भी संकलेश भी हो तो है ना, वो तो डिपेंड्स जीव के जैसे परिणाम है, परंतु उसमें भी इतने संकलेश हो सकते हैं। शुक्ल लेशा वाले जीवों में हम आए अभी पेज नंबर 16 पर, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है। उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव, ये मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं लिखा। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा। क्योंकि समय दृष्टि शुक्ल लेश वाले मनुष्य तीरियंच तो विशुद्धि ज्यादा है उनके, तो उनका अनुभव इतना नहीं बंधेगा चार गति का, यहाँ देवों की होगा। उनके लिए उसमें भी मनुष्यों से देवों की वो संकलेश ज्यादा हो गए। शुक्ल लेशा वालों में मैक्सिमम अनुभव, यहाँ मार्गणा का अनुभव लेना है, ओक का अनुभव की बात नहीं लेनी है। शुक्ल लेशा वाले जो अनुभव बंद करेंगे घाती कर्मों का, उनमें मैक्सिमम किसके होगा, तो इसलिए देवों को लिया। शेष कर्मों का भंग ओह के समान है, क्योंकि शुक्ल लेशा तो श्रेणी में होती है, तो वेदिनी नाम गोत्र भी वहां लेना है और अप्रमत्त को भी लेना है आयु कर्मों में। अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों में मत्य यानी जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है अभव्यों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। तो संगी, पंचेंद्रिय, साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अथवा द्रव्य संयत मनुष्य, द्रव्य संयत नहीं द्रव्य लिंगे, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इन्हें यहां पर भी वो शुभ प्रकृतियां ही ली है, ऐसा नहीं है कि इसके प्रतिपक्षी प्रकृति जो निज गोत्र वगैरह का अनुभव उत्तम होगा, ऐसा नहीं लिया। कहीं पर उसकी बात आई थी ना गोत्र की, निज गोत्र बांधता है ऐसे। हाँ ये कहाँ आई थी, नारकियों में लिया था। याद आया कल हमने पढ़ा था, गोत्र में भी कहीं आया था ये, मेरे ख्याल अग्नि का एक में आया होगा, नहीं हाँ, इसीलिए वहां नीच गोत्र को उत्कृष्ट में नीच गोत्र को लिया। अब आते अपने पेज नंबर 16 पर, भी सम्यक तो मार्गणा में वेदक सम्यक दृष्टि जी होंगे। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है, ते साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंद में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत सम्य दृष्टि चौथी से गिरने वाला लिया उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है। वेदक सम्य दृष्टि है बस
तो
उसमें लेना द्वितीय उपशम करने वाला है या कहो कि वेदक सम्य दृष्टि में अप्रमत्त गुणस्थान में शायिक सम्य को प्राप्त करने अभी सर्व विशुद्धि में ले लेना उसको। इसमें भी दो दो ही लिए ना। अब शायिक सम्य दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत सम्य दृष्टि जीव। अभी गिरने का सवाल नहीं है तो उत्कृष्ट संकलेश वाला गया। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग ओघ के समान है। क्षायिक है तो क्षपक प्रकृति में उसमें लेना और आयु को अप्रमत्त में लेना उपशम सम्य दृष्टि जीवों में तीन अगतिक क्षपक में होगा सूक्ष्म सांप्राय और आयु सात्वे में। उपशम सम्य दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत सम्य दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी अंतिम उसके दसवें के अंत में ले लेना। सासाधन सम्य दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अभी वो मिथ्या तो के अभिमुख वाला लेना उसमें। साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्या तो के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत और नियम से सर्व विशुद्ध अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी अभी भी वो सासाधन में आया हुआ ऐसा ले सकते हैं, शुरू में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत तत्प्रायग विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। मनुष्य को लिया हूं। देवायु बांधने वाला मनुष्य लेना मेरे ख्याल से वो मुनिराज को ही शासादन में आते हैं उसकी अपेक्षा लेनी पड़ेगी।
शासादन में आने के पहले बांटते वो
द्रव्यलिंगी लेना ना तब भी यहाँ पर ऑलरेडी वो भावलिंगी तो थे ना शम समेत तो में थे और छठे से गिरकर दूसरे में आए और देवायु बांध रहे ऐसा ले सकते हैं ना इसलिए मनुष्य लिया अन्यतर मनुष्य लिया नहीं छठे से दूसरे में आने वाले हो सकते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव में वो ग इकार के बाहर निकाला उन्होंने वो वेलांटी है ना इकार उसके अंदर ग चाहिए म को जोड़कर सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट मिथ्या तो की अभिमुख क्यों लिया नहीं उत्कृष्ट शब्द वहां नहीं चाहिए था नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त नहीं लिखा उन्होंने इसलिए मिथ्या तो के अभिमुख हो गया एक शब्द छूट गया देखो शासादन में कैसे लिखा अन्नदर चतुगदी सागर जागृत नियम उक्कस संकलित मिच्छत्ता भीमा उक्क वट्ट ऐसे उक्क यहाँ क्या लिखा नियम उक्क संकिली रह दिया इसलिए वो गड़बड़ हुई प्राकृत में संकिली शब्द डालेंगे तो उसका नीचे हिंदी में क्या होगा नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त हाँ नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त शब्द डालना मिथ्यात्व लिखा है ना उसके पहले उत्कृष्ट और मिथ्यात्व के लिखा है उसके बीच में उत्कृष्ट संकलेश युक्त लिखना हाँ ऊपर भी संकिली लाडाना उसमें संकिली उक्क संकिली मिच्छत्थाभिमु तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में जो उत्कृष्ट संकलेश वाला मिथ्यात्व के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है अभी यहाँ विशुद्धि ज्यादा लेनी पड़ेगी संयम होगा तीसरे से संयम तीसरे से मात्र चौथे में जा सकता है तो कहते हैं साकार जागृत सर्वविशुद्ध सम्यक्त्व के अभिमुख संयम के नहीं सम्यक्त्व के तीसरे से एक ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए चौथा नीचे जाने के लिए पहला और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है असंगी जीवों में संगी मार्गणा में तो हमने देखा था ना संगी में उत्कृष्ट बंध होता है उसकी तो बात हुई थी चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है तो वे साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त असंगी में लेना ना असंगी तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के असंगी है तो असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव गया उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तत्प्रायिक संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। कल भी बात आई थी यहाँ नरकायु लेना है, स्थिति में कुछ ऐसा प्रश्न आया था ना, असंगी जीव देवायु बड़ी बांधते कि नरकायु, ये नरकायु बड़ी बांधेगी उसका अनुभव भी ज्यादा करते। असंगी जीव पंचेंद्रिय नरकायु भी पल्ले का असंख्यात विभाग प्रमाण बांधता है और देवा भी उतनी बनते, परंतु यह नरकायु का ज्यादा होगा बंध, उसका अनुभाग भी ज्यादा लिया है। स्थिति अनुभाग अधिक होगा उसमें, हाँ स्थिति में भी ये प्रश्न आया था, मैंने पूछा भी था कि क्या असंगी असंगी में हमने वहाँ लास्ट क्लास में थी ना, कुछ पार्ट उसका निकल गया था अल्पबोध में, तभी ये बात उठाई थी असंगी मार्गना में, वही बात आई थी, यहाँ वो क्लियर हो जाता है। अनाहारक जीवों का भंग कार्मण कायोगी जीवों के समान है। कार्मण कायोगी में हमने देखा था पंचेंद्रिय जो है पर्याप्त में उत्पन्न होने वाला, इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। उत्कृष्ट में हमने चार घातियों में तो उत्कृष्ट संक्लेश वाला लिया था, उत्कृष्ट स्वामित्व के लिए वेदनीय नाम गोत्र के लिए प्रशस्त प्रकृतियों की अपेक्षा विशुद्ध वाला लिया था। आयु में भी अभी जहां जो अधिक आयु बांधते उसके विशुद्धि हुई। नरकायु के लिए संक्लेश वाला लिया था, देवायु वगैरह के लिए विशुद्धि वाला लिया और उसमें हमेशा तत्प्रायोगी शब्द डाला। अब जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी यह घाती है और प्रशस्त है और उसका जघन्य बंध तो क्षपक वाले के होगा। अंतिम अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक सूक्ष्म सांप्राय जीव उक्त कर्मों के, पहले हमने नाम गोत्र और वेदनी के लिए इसको लिया था जघन्य अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग के लिए, और यहाँ वही जीव ये, हाँ ये सूक्ष्म सांप्राय में तो देखो यहाँ बराबर लिया ज्ञान और दर्शन अंतराय लिया, मुनि को छोड़ा है ना, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। 18 नंबर पेज पर आना। मौनीय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम अभी नव गुणस्थान वाला होगा, अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव मुनि कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। चार घातियों के लिए तो स्थिति और अनुभाग का स्टेटमेंट समान होगा और शुभ प्रकृति में उल्टा पुल्टा हो जाता है। वेदनीय का मैक्सिमम अभी उसमें भी मूल प्रकृति ली है और इसमें प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग तो क्षपक के लिया था। अब वेदनीय और नाम गोत्र को छोड़ा, वेदनीय और नाम कर्म, क्योंकि गोत्र में हमने देखा तो नीच गोत्र का भी कंसीडर करने पड़ेगा। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जीव वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मूल प्रकृति में लेना और परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लेना। परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला यानी वो तो साता से असाता वगैरह उसका बदलते रहता है, ऐसा जीव लेना। निकालो निकालो उत्तर प्रकृति निकाल स्वामी
को।
स्वामी तो निकालो किसका भोग में ले रहे ना अभी हम जगन्य, जगन्य का स्वामी ले। कहाँ पर है
ये चतर का चतर दूसरे का?
हाँ पेज नंबर
है ना।
नहीं नहीं हम वहाँ उत्तर प्रकृतियों में देख रहे हैं। दो सौ बारह में साता असाता स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ वगैरह का कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, जगन्य अनुभव बंद करने वाला, अन्यतर चार गति का मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि जीव, यानी दोनों का होगा जगन्य। दोनों देखो ऐसा नहीं लिया, सब दोनों के लिए समान लिया, मिथ्या दृष्टि भी और समय दृष्टि भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं किया। साता के लिए समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि रसाता ऐसा डिफरेंस वहां नहीं लिया। दो सौ बारह में दोनों को समान लिया। हाँ दोनों को लिया है, समय दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी। परिवर्तमान यानी जो हम प्रतिपक्ष वाली जो उलट पुलट होते हैं, हाँ मध्यम परिणाम दोनों में होंगे। हम कहाँ तक आए थे? 18 पेज पर परिवर्तमान वाली बात चौथी लाइन में होगी, पांचवे में आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है? अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंद में अवस्थित जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी है। हाँ अपर्याप्त जो अपर्याप्त की आयु बांधेगा ऐसा लगता है, पर अन्यतर जगत में अपर्याप्त निवृत्ति निवृत्त माने इस जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से अपर्याप्त निवृत्ति निवृत्त माने निवृत्ति अपर्याप्त में आयु कर्म कैसे बांधेगा? अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान यानी वो उसकी जो हाँ पर्याप्ति, तो ये जघन्य काल लेना। निवृत्ति अपर्याप्त लेना ना, निवृत्ति अपर्याप्त जीव उसमें भी निवृत्ति अपर्याप्ति का काल जघन्य लेना। अपर्याप्त क्योंकि देखो देखो आयु कर्म कहाँ जघन्य आयु कौन सी अपर्याप्त की, और बांधने वाला भी अपर्याप्त लेना है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मुझे भी बराबर समझ में नहीं आया। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन? अन्यतर जघन्य, जघन्य शब्द पहले लगाया, जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त माने से। मैंने अपर्याप्त निवृत्ति वाला जो काल है उसमें जघन्य काल वाला लेना, निवृत्ति अपर्याप्त का जघन्य काल क्षुद्र भव वाला ले सकते हैं ना, ये तो पर्याप्त होगा ही नहीं। अपर्याप्त ही जीव आयु का बंध करेगा अपर्याप्त अवस्था में, बाकी जीव तो करेंगे नहीं, तो उसमें भी जघन्य लेना और फिर उसमें निवृत्त मान, निवृत्त माने ऐसे लिखा ना।
213
मध्यम परिणाम वाले में ही आयु का बंध होता है, इसलिए उसको मध्यम परिणाम वाला लिया। जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान, हाँ लब्धि अपर्याप्त वो तो बताया ना मैंने, निवृत्ति अपर्याप्त ही लेना वहां पर, यानी लब्धि अपर्याप्त, सॉरी लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान, क्योंकि उसमें आयु का बंध करने वाला तो लब्धि अपर्याप्त जीव ही है। क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त वाला तो आयु का बंध ही नहीं करेगा, उसमें भी वो जघन्य आयु वाला लेना, परंतु उन्हें एक क्षुद्र भव शब्द नहीं डाला उसमें, यहाँ पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लिया, वहाँ अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान
लिया।
परंतु वो बांधने वाला तो पर्याप्त जो भी हो सकता है ना, वहाँ 213 में क्या लिया? 213 देखो, तीर्य चाहे मनुष्यायु के जघन्य अनुभाग बंदी का स्वामी, जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान और मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्यादर्शी तीर्य चाहे मनुष्य उक्त प्रकृति के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी है। ओहो, यह ऐसा लेना है, नरक गति है ना, नरकायु देवायु के जघन्य, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणाम इत्यादि मनुष्य जघन्य अनुभव बंधे का स्वामी है। जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, उसका रिपोर्ट देखेंगे। ये भी तो प्रश्न रहा, गोत्र कर्म में हमने देखा था कि वहां तो सातवें नरक का नारकी जब समय को प्राप्त करता है उसके एक समय पहले वहां पर अंतिम अनुभाग में बंध, यहाँ पढ़ लेते 3 लाइन, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध सम्यक्त के अभिमुख अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। नीच गोत्र, नीच गोत्र
नीच को यहाँ पे नीच को
इसी प्रकार ओघ के समान पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस पर्याप्त पांच मनोयोगी पांच वचन योगी काय योगी लोभ पशा वाले चक्षु हुआ है चक्षु दर्शनी और चक्षु दर्शनी भव्य संज्ञ और आहार जीवों को जानना चाहिए। पहले हमने नारकी के सातवें नरक की बात कब उत्कृष्ट में कब ली थी? नरक की मार्गणा में ठीक है बाद में देखेंगे अभी यहीं रुकेंगे। जावानी के जानते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।